पृष्ठ संख्या 131, अध्याय 11। वही मोहल्ला था, लेकिन बसंती को पराया पराया सा लग रहा था। क्या 7-8 महीने के छोटे से अरसे में ही चीज़ें पुरानी पड़ जाती हैं? अनेक घर पुराने मैले मैले से लग रहे थे। बूथ के पास वाले घर में से कपूर साहिब निकल रहे थे। वह पहले से कहीं ज़्यादा बूढ़ा गए थे और उनकी पीठ झुक गई थी। वह बसंती की ओर देखे जा रहे थे, फिर भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे और मुड़कर धीरे धीरे सड़क पार करने लगे थे। बसंती ने मन ही मन कहा, कपूर साहिब होटल में चाय पीने जा रहे हैं। पहले भी इसी वक्त घर से निकलते थे। सामने वाले घर की माताजी पहियों वाली लोहे की चौखट के सहारे सड़क के किनारे किनारे चल रही थीं। बसंती ने मन ही मन कहा, पहले तो केवल लाठी के सहारे चला करती थीं, अब तो और भी दुबला गई हैं। और बसंती का दिल पसीज उठा। मेहता जी ने अपने घर के आंगन में से सभी पेड़ कटवा दिए थे। बसंती को उनका घर बड़ा नंगा बूचा सा लगा। भला पेड़ कटवाने में क्या तुक थी? इस घर के आंगन में भी बसंती कई बार पेड़ों पर चढ़ी थी, कई बार यहाँ आकर छिपी रहती थी, पर अब तो पेड़ ही यहाँ पर नहीं थे। बच्चे को गोद में उठाए बसंती बार बार उसे कभी दाएं कंधे के सहारे तो कभी बाएं कंधे के सहारे डाल रही थी और बार बार रुक रुक कर आसपास के घरों को देख रही थी। थोड़ी दूरी पर उसके पीछे पीछे छड़ी पटपटाता उसका घर वाला चला आ रहा था। मोहल्ले में पहुंचते ही बसंती का मन जाने कैसा होने लगा था और वह बड़ी आतुरता से आसपास की हर चीज़ को देखे जा रही थी, जैसे कोई चीज़ छूट गई हो जो फिर हाथ में नहीं आ रही हो। टैक्सी स्टैंड पर पहले से कहीं ज़्यादा टैक्सियाँ खड़ी थीं। टैक्सियों के पास आवाज़ें, कसने वाले ड्राइवर और क्लीनर भी बहुत बढ़ गए थे। लंगड़े पति के साथ साथ चलती हुई बसंती टैक्सी स्टैंड के सामने से गुजर रही थी, जब किसी ने आवाज़ लगाई, क्या हम इस लंगड़े से भी बुरे हैं? और उसके पीछे ठहाका सा उठा। बसंती को बुरा नहीं लगा, उसे लगा जैसे किसी ने पहचाना तो। लंगड़ा, पृष्ठ संख्या 132, साथ में ना होता तो वह घूमकर कुछ जवाब भी दे देती। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई उस पर आवाज़ कसे और वह बिना जवाब दिए निकल जाए। यहाँ रोज यही चलन हुआ करता था। जब ढलान पर कोठरी में रहते थे और बस्ती की औरतें चौका बर्तन करने रमेश नगर में आती थीं, तो टैक्सी स्टैंड पर से रोज ही आवाज़ें पड़ा करती थीं। बसंती ने मन ही मन कहा, वक्त बदल गया है, पर ये मुँहें नहीं बदले, और आगे बढ़ गई। दोपहर ढल रही थी और घरों से इक्का दुक्का नौकर खाली बोतलों के छिक्के उठाए दूध के बूथ के पास इकट्ठा हो रहे थे। क्या आज भी माँ यहाँ बैठी होगी? ये बसंती, किसी ने आवाज़ लगाई। जस्सा था, सुषमा बीवी का नौकर। बसंती को पहचानने में देर नहीं लगी। तेरी तो मूछें निकल आई जस्से, बसंती ने हंसकर कहा। इतना बड़ा हो गया अब कहाँ काम करता है? वहीं सुषमा बीवी के पास। अब बोतलों में कितना पानी मिलाता है जस्से? पानी कौन मिलाता है? चल चल, पिछवाड़े के नल से पानी मिलाता था या नहीं? अब नल के देर से खुलते हैं, जस्से ने खिसियाते हुए कहा। फिर बसंती के पीछे की ओर इशारा करते हुए बोला, यह कौन है? कौन है वह लंगड़ू जो तेरे पीछे चला आ रहा है? बसंती ने पीछे की ओर घूम कर देखा और बोली, तेरा बाप है। जस्सा झट से बच्चे की ओर संकेत करता हुआ बोला, मेरा नहीं, इसका बाप है। सहसा बसंती के मुंह से निकला, दीनू को कहीं देखा है? दीनू यहाँ कहाँ से आया? बसंती को झेप हुई, पर वह झट से संभल गई। वह स्वयं हैरान थी कि उसके मुंह से दीनू का नाम कैसे निकल गया। बात बदल कर बोली, इधर धोबी बैठता था, मेरा चाचा। वह कहाँ गया? पृष्ठ संख्या 133, धोबी अभी भी इधर ही बैठता है। तुम्हें मालूम है, पुलिस वाले उसका ठेला और स्त्री उठाकर ले गए थे, जस्से ने बताया। फिर क्या? अब वह बाबू के चबूतरे पर बैठकर कपड़े इस्त्री करता है। ठेला उसके पास नहीं है, यहीं चबूतरे पर ही रात को सोते हैं। क्यों? उसके बेटे मंगलू ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मंगलू अब फलों का ठेला लगाता है, पीछे चौक में बैठता है। क्या बोल रहा है? अपने बाप को निकाल दिया है? माँ और बाप दोनों को, धोबन और धोबी दोनों अपने बेटे के पास जाकर रहने लगे थे ना, एक दिन बेटे ने दोनों को घर से निकाल दिया। बसंती थोड़ी देर चुप खड़ी रही, फिर बोली, आज काम पर आए हैं? धोबन तो कभी कभी आती है, पर धोबी तो लक्ष्मी को ढूंढता फिरता है। क्यों? लक्ष्मी भाग गई है ना, उसका कुछ पता नहीं कहाँ भाग गई है? बसंती चुप रही। मोहल्ले में सचमुच बहुत कुछ बदल गया था। उसे बहुत सूना सूना सा लग रहा था। रमेश नगर की ओर आते समय बुलाकी ने कहा था कि रास्ते में तेरे बाप से मिलते चलेंगे। बसंती ने हूँ हाँ कुछ नहीं कहा था। उसे बाप से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। पर टैक्सी स्टैंड के पास दीवार के साथ जहाँ बसंती का बाप बैठा करता था, खाली दो पत्थर की बुत्तियाँ पड़ी थीं। बुत्तियों से थोड़ा हटकर दो और नाई खड़े काम कर रहे थे। दोनों जवान थे और अपरिचित से जान पड़ते थे। इधर बूथ के पास पहुंची तो माँ को भी वहाँ पर नहीं देखा। अक्सर बूथ खुलने से घंटा भर पहले माँ आकर बैठ जाया करती थी। बूथ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। बहुत से नौकर पहुँच गए थे और आपस में बतिया रहे थे। बसंती को बहुत से चेहरे अनजाने लगे। इसी बीच बुलाकी लाठी पटपटाता पास आ गया, पर बसंती वहीं पर रुकी रही। पास में आने पर उसे आगे चलते रहने को कहा। तू चल मार्केट में पृष्ठ संख्या 134 चलकर बैठ, मैं आती हूँ। और जस्से के साथ फिर से बतियाने लगी। जस्से से उसे ढेरों बातों का पता चला। अब बहुत से घरों में मद्रासी मर्द और औरतें चौका बर्तन करने लगे हैं। घरों में नौकर पहले से भी कम रह गए हैं। सभी नौकर कोई चपरासी बनना चाहता है, कोई ड्राइवर, कोई फैक्ट्री में काम करना चाहता है। बिश्ना था ना वह जो बढ़ेरा साहिब के घर काम करता था, अब ट्रक चलाता है। बसंती सोच रही थी, ना जाने श्यामा बीबी कहाँ होंगी, क्या मालूम वह भी यहाँ से चली गई हूँ। वह मुझे बुढ़ऊ के साथ देखेंगी तो कहेंगी, ठीक ही तो किया तेरे बाप ने, कहाँ मारी मारी फिर रही थी। अब देख तो कैसी बढ़िया साड़ी पहनकर घूम रही है, छम छम करती जा रही है, और बेटे को भी कितने अच्छे कपड़े पहना रखे हैं। बसंती जरूर श्यामा बीवी से मिलना चाहती थी। रमेश नगर में आने का उसके लिए अभी भी यही सबसे बड़ा आकर्षण था। वह श्यामा बीवी को अपना बेटा दिखाना चाहती थी, अपना पप्पू जो इस वक्त उसके कंधों से लगकर सो रहा था। और सच पूछो तो श्यामा बीवी को अपने कपड़े लत्ते की झलक भी देना चाहती थी। जहाँ रमेश नगर में फिर से घूमने का चाव था, वहाँ साथ ही साथ एक प्रकार की वितृष्णा भी थी। जहाँ किसी किसी वक्त उछाह सा उठता, वहाँ साथ ही साथ एक टीसी भी उठती थी। श्यामा बीवी के घर की ओर जाने वाली सड़क की ओर मुड़ने पर बसंती ने अकारण ही अपना इरादा बदल लिया और मार्केट की ओर जाने लगी। बसंती मार्केट में पहुँच कर बुलाके से जा मिली। मार्केट में दर्जी को कुछ कपड़ा लेना था और बसंती बच्चे के लिए दूध की बोतल लेना चाहती थी। बसंती भी अपने बच्चे को वैसी ही बोतल में दूध पिलाती थी जैसी बोतल से इन घरों में रहने वाली स्त्रियां पिलाती थीं। वैसे ही नेपकिन भी बच्चे को बांधती थी, उसे नहलाने के बाद पाउडर भी छिड़कती थी। जो कुछ इन घरों में देखती रही थी वह सब करती थी। बच्चे के पालने पर भी उसने वैसा ही बिछौना लगा रखा था, वैसे ही घंटियों और खिलौनों से उसे सजा रखा था। पृष्ठ संख्या 135 अपनी खरीददारी से निबट कर वह शीघ्र ही मार्केट के सामने बने पार्क में आ गए। उसकी उत्सुकता फिर से जाग गई थी। पार्क के सामने अब चाट वाला नहीं बैठता था, ना जाने कहाँ चला गया था। क्या सचमुच इस मोहल्ले को छोड़े उसे बहुत दिन बीत गए थे? पार्क उसे भरा भरा और बड़ा प्यारा लगा। उसका दिल फिर से मचलने लगा। घास पर बहुत से बच्चे खेल रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, किलकारियां भर रहे थे। यहाँ वह सुमित्रा बीवी के बच्चे को बग्घी में डालकर इन बच्चों में से किसी बच्चे को पहचान पाना अब कठिन हो रहा था, पर ध्यान से देखने पर उसने एक दो को पहचान भी लिया। पार्क नहीं बदला था, केवल थोड़ा छोटा लग रहा था, और आसपास के घर मैले से लग रहे थे। सदा की भांति आज भी वहां पर कितने ही बेरोजगार लोग घास पर पसरे हुए थे। यह पार्क बेरोजगारी का अड्डा था और बूढ़े मर्द औरतों का क्लब। जिन दिनों दिनों के पास काम नहीं था, वह भी यहाँ आकर बीड़ियाँ फूंकता रहता था और दिन भर लेटा रहता था। जिन बेरोजगारों की जेब में कुछ ना होता, वे किसी झाड़ी के नीचे आकर लेट जाते और घंटों लेटे रहते थे। जिनकी हालत कुछ बेहतर होती, वे मिलकर ताश खेलते, मूंगफली छील छील कर खाते, गप लड़ाते थे। पार्क के चौकोरों में लगी बेंचों पर अभी से मोहल्ले के बूढ़े आकर बैठने लगे थे, और एक कोने में बूढ़ी औरतें भी आ आकर बैठने लगी थीं। बसंती लगभग सभी को जानती थी। कपूर साहिब बैठे अखबार बांच रहे थे। ओ बीवी जी, इनके तो जेब में हर वक्त अखबार होता है। जहाँ बैठते हैं जेब में से अखबार निकाल कर पढ़ने लगते हैं। बसंती श्यामा बीवी को इन बूढ़े बूढ़ियों के किस्से सुनाया करती थी। एक बार क्या हुआ कि कपूर साहिब बेंच पर आकर बैठ गए। मैं पास थी सुमित्रा बीबी के टिप्पू को खिला रहे थे। उस दिन उनके पास न अखबार था न जेब में ऐनक। उनकी समझ में नहीं आए कि क्या करें। फिर जी वह उठे। पास ही एक बेंच पर एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। उससे दो पन्ने अखबार के मांगे। एक और आदमी से उसकी ऐनक मांगी और वहीं बैठकर अखबार बांचने लगे। बसंती हंस हंस कर सुनाया करती थी, बीबी जी तीन बूढ़े मिल बैठते हैं तो सारा वक्त दवाइयों की बातें करते रहते हैं। कोई कहता है मैं दिन में 6 गिलास पानी पीता हूँ, कोई पृष्ठ संख्या 136 कहता है मैं 2 चपातियाँ सुबह और 1 चपाती रात को खाता हूँ, आधी रोटी की भूख अभी भी रहती है, इससे पेट ठीक रहता है। बसंती नकल उतार कर पेट पर हाथ फेर कर कहती और हंसी से लोटपोट होने लगती। मैं तो रात को 2 सूखे रस्क दूध में डालकर खाता हूँ, 7 बजते ही खा लेता हूँ, इसके बाद कुछ नहीं खाता। बसंती फिर किसी दूसरे बूढ़े की नकल उतारती हुई कहती, कब्ज सब बीमारियों की जड़ है, कब्ज नहीं होने देना चाहिए। तीन बूढ़े मिल जाएं बीवी जी तो वाकयात पर बातें करने लगते हैं। वाकयात क्या होता है बीवी जी?